ओम शांति। संध्या समय की सुंदर वेला में हमारे बीच में परम आदरणीय गीता दीदी जी पधारे हैं। हम आपका एक हाथ की ताली के द्वारा स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। गीता दीदी जी, जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका जीवन भी है। आप 1969 14 वर्ष की छोटी आयु में ही आपने ज्ञान प्राप्त किया और आप अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में भी बहुत अच्छी अत्यधिक मेगावी छात्रा रही हैं और साउथ गुजरात में आपने मैट्रिक बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करके आपने अपना गौरव प्राप्त किया। 1972 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया और गुजरात के अनेक स्थानों पर भी आपने सेवाएं प्रदान की। 14 वर्ष तक आपने भावनगर में सब जोन इंचार्ज के रूप में सेवाएं प्रदान की। वर्तमान समय आप शांतिवन में रह करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आप बिजनेस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी रही हैं। आपके लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगी। दिव्य गुणों की फूल बनी आप, रूहानी है मुस्कान, खुशबू फैली पवित्रता की, आकर्षित है भगवान, मीठी मैना की सी गुंजन, विवल करता प्राण, मर्यादा दर्शन आपका जीवन, सरल सरस सुनाती बाबा का ज्ञान। आज का आपका विषय है आत्मशुद्धि के लिए शक्तिशाली तपस्या। आदरणीय गीता दीदी जी,
ओम शांति। संगम युग के इतिहास में चंडीगढ़ का अपना ही नाम है विशेष। इसकी नींव में, चंडीगढ़ की नींव में ही तपस्या के बीज रहे हुए हैं। हम 72 में ही या पता नहीं 3 में जब पहला सम्मेलन अमृतसर में हुआ था, उस समय हम आए थे चंडीगढ़। वो पहला क्लास हमने देखा था जहां सब बिल्कुल योगी की तरह लाइन में विशेष रूप से बैठे हुए थे और अचल दीदी तपस्या की मूरत। हमारी पहली ट्रेनिंग 71 में जब हुई थी तो अचल दीदी हमारी टीचर थी। उस समय हम बिल्कुल माना भट्टी में छोटे थे, 15 साल के थे। भट्टी थी कॉलेज में पढ़ने वाली और नौकरी करने वाली कुमारियों की, लेकिन हमारा परिवार 69 में ज्ञान में आया और शुरू से ही पिताजी बहुत मतलब उमंग, उत्साह, निश्चय, नशा, सेवा में बहुत एक्टिव थे। तो दादी ने कहा तुम्हारी कुमारियों को भी भेजो। माता पिता का लक्ष्य था, वो भट्टी में आए थे और दादी ने पूछा था कौन युगल अपनी बच्चियों को समर्पित करेगा, तो उन्होंने हाथ उठाया था। हमारा तो लक्ष्य नहीं था, हम तो अपनी पढ़ाई में ही मस्त थे, पढ़ने में ही बहुत इंटरेस्ट था और कोई शौक नहीं, इच्छा नहीं, पढ़ना ही बहुत अच्छा लगता था। तो 69 से घर में बहने आती थी, क्लास होते थे, सेवा होती थी। उस समय सूरत में सेंटर भी नहीं था तो हमारे घर में ही सब आते थे। हमने माउंट आबू से ज्ञान लिया था पिताजी ने, तो पिताजी का तो लक्ष्य था कि ये कब ब्रह्मा कुमारी बन जाए, और हमारी बुद्धि में तो कोई ऐसा था नहीं, पर हम आए थे ट्रेनिंग में, भट्टी में सब कुछ रेगुलर करते थे, क्लास योग सब अच्छा लगता था, पर एक जो एम बनना चाहिए वो नहीं था। तो अचल दीदी हमारे टीचर थे, तो दीदी का जो सरल सादा और सात्विक जीवन वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारा भी लाइफस्टाइल वो ही था शुरू से। उसके बाद 71 में आए थे, तब दीदी का क्लास देखा कि सारे योगी सफेद वस्त्रधारी एक दो से अलग अलग लाइन से बैठे हुए थे, तो वो फाउंडेशन तपस्या का उस समय भी देखा। और प्रैक्टिकली जब भी दीदी मधुबन आते हैं, हम लोग बाद में आते थे, पर हमारे से पहले दीदी योग में आके बैठे हुए होते थे। माना इतने एज के बाद भी लास्ट तक जब तक वो आते रहे। तो आप सब तो है ही तपस्वी, ऐसी पालना लिए हुए हैं। अमीर चंद भाई जी भी, और अभी जो उनकी वंशावली है, सब आपकी बहनें दीदियां भी ऐसी ही है, ये भी एक सौभाग्य की बात। कहते हैं भक्ति में जिसने शिव जी की साबुत चावल से पूजा की होती है उनको अच्छी टीचर मिलती है, ऐसा कहते हैं। तो आप सबने बहुत जिगरी शिव बाबा की भक्ति की होगी। तपस्या ज्ञान प्राप्ति के बाद, तपस्या ही तो मुख्य लक्ष्य है। भक्ति में भी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद मन परमात्मा में एकाग्र हो, वो ही महत्व की बात है। हजारों शास्त्र पढ़े हों पर मन भटकता हो, तो उस विद्वत्ता का कोई अर्थ नहीं है। उन विचारों को तो कोई सत्य ज्ञान नहीं मिला है, पर हमें सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल सत्य ज्ञान हमें मिल चुका है, हमें सत्य खोजना नहीं है। सत्य स्वयं हमारे आगे स्पष्ट है। परम सत्य बाबा रोज हर बात के सत्य हमें बताते हैं। अब हमारे लिए तो मुख्य बात यही है कि हम बाबा की याद में एकाग्र हो जाएं। तपस्या का ध्येय भी यही बताते हैं, आत्म शुद्धि और परमात्मा प्राप्ति। इसलिए भक्ति में भी हर धर्म में तपस्या का महत्व है। हिंदुओं में श्रावण मास में अधिक मास में कितने व्रत उपवास तप दान पुण्य करते हैं, मुस्लिमों के भी रमजान मास में, जैनों का पर्युषण मास होता है, इवन क्रिश्चियनों में भी जब ईस्टर के दिन होते हैं, मार्च में शायद आते हैं, उस समय 15 दिन वे भी तप व्रत ऐसा करते हैं। हमारे लिए तो मुख्य पुरुषार्थ ही ये है, हमें और कोई मेहनत नहीं करनी है। वे योग करते हैं भक्ति में परमात्मा प्राप्ति के लिए, प्रभु दर्शन के लिए। हमें परमात्मा मिल चुका है, हम परमात्मा प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं करते हैं, हमें तो परमात्मा मिल चुका है। उस परमात्मा पिता से जो प्राप्तियां करनी है वो कैसे करनी है, उसका माध्यम है योग तप। बाबा ने हमें सहज योग बताया, पर योग जीवन पद्धति है। हम 1-2 घंटे के 2-4 दिन के योगी नहीं है, योग मार्ग है जीवन जीने का। तो एक तो हम सब नित्य अभ्यास करते हैं, हमारी तपस्या क्या है, योग तपस्या भट्टी में हम आते हैं, हमारी तपस्या क्या है, हमारी पहली तपस्या है देहभान से न्यारा होना, आत्मभान में स्थित होना। हम साइलेंस में बैठकर स्वयं को देह से न्यारा आत्म स्वरूप में स्थित करते हैं। आज भी बाबा ने बताया अशरीरी बन जाना, दैट्स साइलेंस। वे देहभान से न्यारा होने के लिए देह को कष्ट देते हैं भक्ति में, इंद्रियों का दमन करते हैं, आंख बंद करते हैं, उपवास करते हैं, मौन करते हैं, निर्जला करते हैं, वे इंद्रियों का दमन करते क्योंकि उनको मूल प्रथम सत्य पता नहीं है कि मैं आत्मा हूं। इस प्रथम पाठ ने तपस्या की सारी मेहनत को समाप्त कर दी। हम रोज कुछ क्षण सभी बातों से डिटैच होकर अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। ये योग का आसन है। जैसे वो आसन पर बैठकर योग करते हैं, हम आत्म स्थिति के आसन पर बैठकर फिर बाबा से मिलन मनाते हैं। ये देह भान से न्यारा होना ऑटोमेटिक हमें सभी बातों से, सभी व्यक्तियों से, पदार्थों से, ड्रामा की हर सीन से साक्षी बना डिटैच करता है। योग की पहली शर्त है डिटैचमेंट। हम घड़ी घड़ी बार बार खुद को शरीर से अलग महसूस करते हैं। नेचुरली भोगवाद, भौतिकवाद का आकर्षण कम हो जाता है। हमारा दूसरी तपस्या है देहभान से पहला न्यारा होना, प्रैक्टिकली कमल फूल बनना। दूसरा है कि शरीर से हम यहां हैं और बुद्धि से सदा ऊपर है। इस दुनिया में रहते हुए मन की आंख से सदा अपने मूल घर को देखना। क्यों बाबा सालों से ये तैयारी करा रहा है? देहभान से न्यारे रहने की और सदा वतनवासी बनने की। क्योंकि ड्रामा का भावी यही है, वापस घर जाना है। बाबा पहले से तैयारी कराते। आज भी बाबा ने कहा, ऐसी याद हो जो अंतकाल में कोई याद ना आए। रोज ये डिटैच होकर ऊपर उठने की प्रैक्टिस हम कर। हमारी तीसरी तपस्या है एक बाबा में मगन रहे। अब हमारे लिए भटकने का कोई कारण नहीं, न मन से भटकना न तन से भटकना। सर्व खजानों की चाबी बाबा मिल गए हैं, अब हमारे सर्व संबंध बाबा से हैं, हमारी सर्व प्राप्तियां बाबा से हैं। हमें बाबा में ही इंटरेस्ट है, नहीं है तो हमें डेवलप करना है, खुद के पीछे मेहनत करनी, अपने आप को ये सत्य हमें बार बार समझाना है कि प्राप्ति एक बाबा से, उसे की याद में फायदा है, उसकी याद में ही मुझ आत्मा का कल्याण है। ये अपने आप को कन्विंस करना है, देहधारी की याद देहभान में लाने वाली, देहधारी देवात्मा हो, धर्मात्मा हो, महात्मा हो, पुण्यात्मा हो या साधारण मनुष्यात्मा हो, पर देहधारी की याद देहभान में लाते, एक निराकार की याद ही देहभान से न्यारी करने वाली। संपूर्ण आत्मभिमानी बनने के लिए एक निराकार को याद करना जरूरी, तो बुद्धि की लाइन क्लियर, एक और कोई नहीं। भल ड्रामा में हैं हम, आत्माओं से संबंध है, पार्ट प्ले करना है, कर्तव्य अदा करना है, मूल चीज है मुझे किसी में भी अटकना नहीं है। योग वो सिखाता है, बुद्धि किसी में भी मेरी अटके नहीं, वो लाइन क्लियर उसको कहा जाए। चौथा है, क्योंकि हमारी तपस्या कोई क्रिया नहीं है, हमारी तपस्या जीवन पद्धति है, इसलिए हमारी चौथी तपस्या है जैसे कोई चीज की प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अटेंशन रखते हैं, तो कहते हैं ना कि मैंने इसके लिए बहुत तप किया है, तब मिला है। माना अटेंटिव रहे हैं उसके लिए। तो हमारा चौथा तप है कि कर्मेंद्रिय से इस ब्राह्मण जीवन में कोई भी पाप ना हो। हमारा अपने आप पर इतना संयम रहे, इतना नियम रहे, अटेंशन रहे, कर्मेंद्रिय से कोई पाप नहीं करना। ये प्रारंभ का लक्ष्य है। बाबा कहते हैं मनसा कितने भी तूफान आए पर इतना सेल्फ कंट्रोल हूं कि कर्मेंद्रिय से कोई भूल ना हो। कर्म में कंट्रोल, क्योंकि कर्म में जो चीज आ जाती है वो पत्थर पर लकीर बन जाती है। उस इंप्रेशन को मिटाना जीवन भर का पुरुषार्थ है। फिर भी दाग तो दागी। और अब समय अनुसार बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मनसा में भी वो चीज ना है। अब हमारा ये अटेंशन दृढ़ता कि जो चीज हमें कर्मेंद्रिय से नहीं करनी है वो मनसा में भी क्यों। वो युद्ध मनसा में भी क्यों हो। ये मन का युद्ध क्यों होता है। जरूर हमने जो नियम मर्यादाएं धारणाएं तपस्वी जीवन की अपनाई है वो जिगरी स्वीकार नहीं की है। मन अभी भी हम उससे विपरीत कुछ चाहते हैं तब तो युद्ध चलता है, वरना युद्ध क्यों चले। जो बाबा कहते हैं मेरी इच्छा रुचि रस कहीं कुछ उससे विपरीत है तब तो युद्ध चलता है। और बाबा कहता है ना ये मनसा युद्ध ही हमारी जमा आध्यात्मिक शक्ति को, रूहानियत को खत्म करते, खर्च करते। इसलिए फिर खुद को कन्विंस करना है कि मैंने ही तो ये जीवन अपनाया है, खुद ने समझ कर ही तो अपनाया है। फिर फिर क्यों उससे विपरीत इच्छाएं क्यों? मम्मा कहते थे ना कि मन में माया आती है, वहां ही खत्म करो। क्यों किसी को पता चले किनको माया आई? माना चेहरे पर भी ना आए, कर्म की बात तो छोड़, पर मन में ही खत्म कर। घर में आप अलर्ट होके बैठे हैं तो ऐसा वैसा कोई घर में घुस नहीं सकता है। अगर हम अपनी अटेंटिव आत्मा स्थिति में हैं, स्मृति स्वरूप है, तो व्यर्थ विकल्प कैसे बुद्धि में आ सकता है? और पांचवी बात, ये भी एक प्रकार से तप है कि जब हम बाबा के साथ जुड़ते हैं प्रैक्टिकली, हम बेहद यज्ञ से भी जुड़ जाते है ना, क्योंकि बाबा बेहद का बाबा है, विश्व का पिता है, विशाल यज्ञ का रचयिता है, विश्व कल्याण का यज्ञ बाबा ने रचा है ना। तो एक बाबा के साथ जुड़ते हैं तो पूरे यज्ञ से हम जुड़ते हैं, बेहद परिवार से जुड़ते। और आपका भी अनुभव होगा कि अब कोई हमें व्यक्ति के रूप में नहीं देखते, हमें देखते हैं लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले आए, ओम शांति वाले आए, हमें संस्था के रूप में देखते। अब हम व्यक्ति नहीं है, संस्था है। यज्ञ के प्रतिनिधि हैं। कमजोरी व्यक्तिगत है, पर लोग कहेंगे क्या, ब्रह्मा कुमारी में ऐसा सिखाते है ना, नाम संस्था का आता है। तो ये भी एक दृढ़ता धारणा रहे कि यज्ञ के अनुशासन में चलना, यज्ञ का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आचार संहिता है, वो हमें मान्य होनी चाहिए। लिखी होती है ना हर सेंटर पर बोर्ड में, हमें इस अनुशासन में चलना। व्यक्तिगत इच्छा प्राप्ति एक तरफ रखकर हमें यज्ञ को देखना होता है। हमें झुकना पड़े, मिटना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, पर हमें यज्ञ के अनुशासन के विपरीत नहीं चलना है। कुछ भी हूं प्रैक्टिकल ये दृढ़ता हमें रखनी है। ये भी एक तपस्या। क्योंकि हमारा लक्ष्य आत्मशुद्धि है, मुझ आत्मा को वापस अपनी अनादि शुद्ध सत्य स्थिति में आना है। और आप देखिए, आत्मा को अपनी उस निर्विकारी शुद्ध स्थिति में ही सुख महसूस होता है। द्वापर से देह भान में आते ही क्यों भगवान को याद करना शुरू किया? क्योंकि आत्मा को जरा भी अपवित्रता पसंद नहीं। हमारी ओरिजिनालिटी सत्यता है, पवित्रता है। और ये समय है संगम का, टोटल ड्रामा वापस अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ रहा है। इसलिए बाबा सदा कहते हैं बच्चों को, फुरना रहे सतो प्रधान कैसे रहे? संगम युग की यही मुख्य उपलब्धि है, प्राप्ति है कि मुझ आत्मा में कोई भी विकार का अंश वंश न रहे। हम थोड़ा बहुत आधा अधूरा कच्चा योगी नहीं बनना चाहते। हम कैसा बनना चाहते हैं? संपूर्ण, सच्चा, पक्का। हमारा लक्ष्य है बाप समान संपूर्ण संपन्न बनना। भगवान का मुख्य कार्य कौन सा है? पावन बनना। बाबा कहते हैं ना, मैं इसके लिए आता, और कोई ये नहीं कर सकता। हमारा भी इस ज्ञान योग में चलने का मुख्य ध्येय क्या हो? यही होना चाहिए। बाबा इसी के लिए आना है। ये मौका है संगम युग में बाबा से संपूर्ण पावन बनने का, पूर्ण सतु प्रधान बनने का। फिर और कोई युग में मौका नहीं, फिर और कोई बनाने वाला नहीं। ये समय है हम अपने आप को जितना ऊंचा, महान, शुद्ध, दिव्य, सत्य बनाना चाहे हम बन सकते हैं, क्योंकि खुद बाबा बना रहे। ड्रामा फेवर में है अभी, क्योंकि ड्रामा सत्व प्रधानता की ओर बदल रहा, बाकी तो सतयुग की पहली क्षण से ही उतरती कला, हर क्षण उतरते जाएंगे ना, चढ़ने का मौका सिर्फ अभी है। तो मेरे इस अलौकिक जीवन का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये ही ध्येय हो कि मुझे अपने आप को पूर्ण शुद्ध, पवित्र, दिव्य बनाना। हम पढ़ाई ज्ञान योग की नित्य इसलिए ही कर रहे, हम नियम धारणाओं में इसलिए चल रहे, ताकि कर्म में नियम मर्यादाएं होंगी तो अभ्यास करते करते मन भी सेट हो जाएगा, शुद्ध हो जाए। सेवा भी हम इसलिए करते हैं ताकि दूसरों को पढ़ाएंगे तो खुद का भी तो पाठ पक्का होगा, और जितनों के जीवन पवित्र योगी बनेंगे हमें दुआ मिलेगी, बल मिलेगा, मदद मिलेगी। तो ये जो तपस्या है उससे क्वालिटी अब बनाना है, क्वालिटी बनाना। योग क्वांटिटी ऑफ योग भी चाहिए, क्वालिटी ऑफ योग भी चाहिए। ये मौका है मधुबन में सभी बातों से फारिग होकर आप आए हैं, अपने आप को हम देख सकते हैं, फ्री है ना, और सब बातों से। इस ब्राह्मण जीवन में जो कुछ हम कर रहे हैं उससे क्वालिटी बनाना, पढ़ाई कर रहे हैं उससे क्वालिटी बनाओ, नित्य मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको और अच्छा क्वालिटी पढ़ाई करो। अपने आप को देखो, बाबा के सामने बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, हमें और अच्छा पढ़ाई कर। हर एक अपने आप को जानता है, हम त्याग करते हैं। जो त्याग किया है मन से, जिगरी त्याग कर, जो कुछ हमने छोड़ा है वो रूप बदल कर वापस जीवन में नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब एक लंबा समय हम पुरुषार्थ करते हैं तो ऐसा होता है, जो छोड़ा है वो वापस आता है नए रूप से। लौकिक का छोड़ा अलौकिक में फिर आता है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी, आप खुद इस बात को समझ सकते हैं। हमने देह संबंधों को भूला, हमें अलौकिक में नए संबंध नहीं बनाने। न्यारा और प्यारा, रूहानी रहना है। बाबा कहते हैं ना, माया अंत तक दांव लगाएगी, नया नया रूप लेकर आती है। अंदर थोड़ी भी इच्छा रही होंगी, अशुद्धि रही होंगी, तो फिर नए स्वरूप से वो चीज फिर वापस आएगी। तो मुझे त्याग को भी क्वालिटी बनाना है। बाबा कहते हैं ना, दिया हुआ दान वापस नहीं लेना है। सिर्फ स्थूल नहीं, चीजें नहीं, धन नहीं, लेकिन सूक्ष्म में फिर इस जीवन में वापस में। हमारी तपस्या क्वालिटी है। जब भी बाबा की याद में हम बैठते हैं, पूरा समेट कर बैठे, पूरा समेट ले, अपने आप को न्यारा कर ले। बैठे हैं योग में पर समेट नहीं पाते, होता है ना ऐसे। आधा घंटा लाल लाइट रही, लाइट लाल से सफेद होती है और अपना विमान उड़ता ही नहीं, यहीं घूम रहा है। बुद्धि से घर जा रहे, ऑफिस जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, क्योंकि योग में हमें सबसे डिटैच होना होता। सेवा क्यों सहज लगती? सेवा में हम इजीली लग जाते क्योंकि सेवा में अटैच होना, सबसे मिलना है, देखना है, अटैच होना है, तो वो इजी लगता। योग में क्यों जल्दी नहीं जाते? प्रोग्राम से ही क्यों योग में बैठते? क्योंकि सबसे डिटैच हो रहा होता है। अपनी दिनचर्या, अपनी जिम्मेवारी सबको पता है, उस अनुसार में कितना समय योग में बैठ सकते हैं वो पहले से सेट कर लें, और जब बैठे पूरा समेट कर बैठे। तो वो आत्मा याद से रिफ्रेश होगी, क्यों नींद आती है, क्यों योग से उठते हैं कोई उबासी खाता है, आलस करता है, क्योंकि न्यारे हुए नहीं, यहां से ऊपर गए नहीं, बाबा के सामने शांति से बैठे नहीं, तो रिफ्रेश कैसे हो। मन में दुनिया भर की पंचायत भरी हुई, तो बाबा के सामने भी शांति से बैठ नहीं पाते हैं। बाबा कहते हैं ना, तुम सारी दुनिया के जनरल सेक्रेटरी नहीं हो, तुम अपने जीवन के मालिक हो बस। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम कितनी पंचायत करते, हमारा संगम युग में यज्ञ में क्या स्थान है और क्या रोल है वो समझ लेना, उस अनुसार उतना ही सोचना। मेरा स्थान क्या है यज्ञ में, जो निमित्त है जिम्मेवार है वो सोचेंगे, हमारा स्थान क्या है और उस हिसाब से हमारा रोल क्या है वही सोचना है। अगर मन में कलह क्लेश भरा हुआ है तो बाबा की याद में भी शांति से बैठ नहीं सके। मन में अगर किसी के लिए बैड फीलिंग है, इसने दुख दिया है, इसने अन्याय किया है, जीवन में बातें तो हुई है पर मुझे योगी बनना है तो मन को साफ करना होगा ना। अपने आप से पूछो अब क्या करना है। खुद खुद को समझाएंगे तो बीती बातों पर बिंदु लगेगा, वरना नहीं लगेगा। कितनी बार ड्रामा याद कर ली, तो बाबा के सामने शांति से बैठेंगे तो आनंद स्वरूप बन के वापस आएंगे। और जिसमें आनंद आएगा तब आप लाइट बनेंगे, हल्के बनेंगे। जिसमें आनंद आएगा उसमें व्यक्ति एकाग्र होता है, वो चीज लंबा समय वो कर सकता है। अगर मुझे खुद में आनंद नहीं, बाबा में आनंद नहीं, तो मेहनत लगती है, भारी लगती है। क्वालिटी अभ्यास मुझे पूरा समेट कर एक बाबा में मगन होना। बाबा ने एक मुरली में बताया है कि बेहद का वैराग्य माना लवलीन अवस्था, अक्सर वैराग्य माना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं, ये नहीं, हमारी बुद्धि में वो ही आता है। बाबा ने कहा बेहद का वैराग्य माना बाबा में लवलीन अवस्था। और जब स्व में आनंद आएगा, बाबा में आनंद आएगा, डिटैच होने में आनंद आएगा, फिर अपने आप कर्म करते भी उस अवस्था में रह सकेंगे। अनावश्यक मन जाएगा नहीं। और बात हमारी इच्छाएं अपेक्षाएं कम होने लगेगी। याद से ही प्राप्ति और अनुभूतियां होने लगी। बाबा ही संकल्प पूरे करते हैं। तो क्वालिटी योग, क्वांटिटी ऑफ योग भी चाहिए। मुझे बाबा से बहुत प्यार है, पर मैं 10 मिनट भी याद में नहीं बैठती हूँ। मैं कहूँ मुझे आपसे बहुत प्यार है पर बात करने की फुर्सत नहीं है, तो इसको प्यार कहेंगे? बाबा से मुझे बहुत प्यार है पर मैं 10 मिनट, घंटा, आधा घंटा जिगरी बैठती नहीं हूँ बाबा को याद करने। तो वो तो नहीं चलेगा। अभ्यास चाहिए, खुद को एजुकेट करना है, तैयार करना है। योग का प्रभाव कर्म तक आना चाहिए। कर्म तक उसका प्रभाव आना चाहिए। यथार्थ योग माना कर्म श्रेष्ठ श्रीमत। यथार्थ योग यथार्थ कर्म आत्मा योग्य बनती है। तो हमें अपनी तपस्या को और क्वालिटी बनाना है। मेरा आंतरिक बाह्य स्वरूप योगी का बन गया। हमारा आहार विहार व्यवहार पहरवाइश संग दिनचर्या योगी की है। ये हमने क्रॉस कर लिया है। ये बहुत बड़ी चीज है, दुनिया में लोग नहीं कर पाते हैं। पर हमारा ध्येय बहुत ऊंचा है, हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है ना, इसलिए हम पुरुषार्थ करते हैं जो वर्तमान समय में, कि जो मेरा आंतरिक सूक्ष्म स्वरूप है मुझात्मा का, वृत्ति के रूप में, स्मृति के रूप में, विचार के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में, सूक्ष्म भाव भावनाओं के रूप में, वो मेरा आंतरिक सूक्ष्म स्वरूप है। वो भी मुझे प्योर शुद्ध दिव्य बना। इसलिए तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, आहार विहार व्यवहार पहरवाई संग दिनचर्या तो ज्ञान में आते ही बदल गए, पर हम क्यों सालों से पुरुषार्थ कर रहे हैं? क्योंकि हम अंदर से माना अपने सूक्ष्म वृत्ति में, इच्छा में, इंटरेस्ट में, स्मृति में भी शुद्ध बनना चाहते हैं, दिव्य बनना चाहते हैं। तो जब एक लक्ष्य से हम पुरुषार्थ करते हैं तो नेचुरली हम बनते जाते हैं। जब आंतरिक शुद्धि होती है तो तप में तेज आता है, बल आता है, तब तपस्या शक्तिशाली बनती है। कहते हैं शब्द शक्तिशाली तब बनते हैं जब सिर्फ मुख नहीं बोलता है, चरित्र बोलता है। तो हमारे शब्द में शक्ति आती, तपस्या में तेज, लाइट एंड माइट तब भरती है जब अंदर से साफ है, शुद्धि। हम जानते हैं संगम के पुरुषार्थ करने के दिन बहुत थोड़े हैं, बाकी तो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम होंगे, है ना। पुरुषार्थ के दिन तो बहुत कम है, तो जब खुद की एक लगन और धुन बनी रहती है कि मुझे करना है, बनना है, तो वो एक अंदर अंदर चलेगा पुरुषार्थ, अटेंशन, वो स्थिति बनती जाती, स्वरूप बनता जाता, खुद भी अनुभव करते, दूसरों को भी करा सकते। तो बाबा की याद में बैठेंगे, इस लक्ष्य से ही हम अभ्यास करें। खड़े होंगे थोड़ा, दो मिनट, कब से बैठे हैं? हाथ पांव स्ट्रेच कर ले, हाथ ऊपर खींचे थोड़ा, पांव भी। थोड़ा खड़े खड़े दौड़िए, हल्का हल्का दौड़िए। दो दो की जोड़ी बनिए, जिसको आप नहीं जानते हैं उनके साथ, आगे पीछे, आगे पीछे की लाइन में जिसको नहीं जानते हैं उनके साथ। एक दो के इस पॉइंट पर बात बताएंगे, वर्तमान समय आपके पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है और आपका पुरुषार्थ क्या है, कान में बताएंगे एक दो को, आवाज नहीं कान में बताना, आप उनको कान में बताओ वो आपको कान में बताए, अच्छी तरह बताओ कि वर्तमान समय मेरा लक्ष्य ये है और मेरा पुरुषार्थ ये है। कान में मंत्र देते हैं ना, तो कान में सुनाओ, बाबा के सामने हो जाइए। पहला अभ्यास, कोई थक जाए तो बैठ जाना, अपनी तबीयत अनुसार देखना, जब चाहे बैठ जाना, इसलिए खड़े खड़े थोड़ा करेंगे ताकि फिर वापस बैठ के हमें अभ्यास करना है तो आप थकेंगे नहीं। पहला अभ्यास, स्वयं में मस्त हो जाना, खुद में खो जाइए, मेरा अपना दिव्य स्वरूप, मैं स्वयं पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइंड, मैं आत्मा सत्य चैतन्य, मुझे अपने स्वरूप में ही आनंद है, निजानंद स्वरूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, निज ज्ञान स्वरूपम मैं आत्मा हूँ, आत्मा, निज प्रकाश स्वरूपम मैं आत्मा। जैसे ही मैं अपने रूहानी दिव्य स्वरूप में स्थित होते हूँ, मैं देह भान से डिटैच हो जाते हूँ, राइट साइड घूम जाए, बिल्कुल स्व में स्थित होकर दूसरा अभ्यास, बाबा में मगन रहना, बाबा मेरा सर्वस्व है, मैं पूर्ण रूप से खुशी बाबा की, मेरी सर्व प्राप्तियां मेरे सर्व संबंध एक बाबा से, बाबा से जुड़ना सही अर्थ में मुझ आत्मा का मुक्त होना है। बाबा बाबा एक ही धुन लगन में मगन रहना, राइट साइड घूम जाए, तीसरी धारणा अपने वर्तमान लौकिक अलौकिक पार्ट में ट्रस्टी बनना, बाबा मालिक है मैं निमित्त, मुझे अपना पार्ट श्रीमत पर प्ले करना है, मैं लाइट और इजी हो जाता हूँ, अन्य सभी पार्ट को पार्ट धारियों को ड्रामा की सीन्स को साक्षी होकर देखना है, शुभ भावना का सहयोग देना है, हमारा श्रेष्ठ पार्टधारी बनना ही सबको सही मदद करना है। राइट साइड को, चौथा अभ्यास शरीर से इस दुनिया में रहते हुए मन बुद्धि से वतनवासी बनना है, मन की आंख से वतन को देखना। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त फरिश्ता बन अव्यक्त बाप दादा से मिलना है या मूल वतन में बिंदु आत्मा बन बिंदु बाबा के पास रहना। पांचवा अभ्यास राइट साइड घूम जाए। मास्टर दाता बनना है जो बाबा ने दिया है वो सबको देना है। बाबा ने सब कुछ दिया है, हमें भरपूर किया है, वो अलौकिक ज्ञान शांति आनंद सुख हिम्मत उमंग शक्ति सबको देना है। बैठ जाए। मास्टर दाता बन देना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। इस अंतिम जन्म के लौकिक परिवार को शुभ भावना मैं योगी आत्मा प्रत्यक्ष परोक्ष सबके लिए कल्याणकारी इस अंतिम जन्म के देह संबंधी भी सुखी रहे स्वस्थ रहे। स्वयं को जाने बाबा को पहचाने। मुझ योगी आत्मा का इस लौकिक परिवार में जन्म लेना। उन आत्माओं का कल्याण करना, ये समय को पहचाने, बाबा से वर्षा ले। बैठे बैठे राइट साइड घूमे, अलौकिक परिवार के साथियों प्रति मेरा अलौकिक सहयोग, हमें मिलकर संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। हमें मिलकर बाबा के कार्य को संपन्न करना, इन दोनों लक्ष्य सिद्ध करने में हम एक दो के सहयोगी हैं, योगी हैं। लेफ्ट साइड घूम जाए, जिस समाज देश में हम रहते हैं, विश्व की समस्त मानव आत्माओं के लिए मनसा संदेश है सेवा है। बाप आ चुके हैं, सुख का वर्षा दे रहे हैं। बहुत जल्दी गोल्डन सवेरा होना है। बाबा को जानो, पहचानो, वर्षे के अधिकारी बनो। लेफ्ट साइड घूम जाए, समस्त प्रकृति जगत पशु पंछी पांचों ही तत्व उनके प्रति भी शुद्ध वाइब्रेशन। ड्रामा में प्रकृति ने हमें पूरा साथ दिया है। हम आत्माओं को उसने फॉलो किया। हम सतु प्रधान बन रहे हैं। प्रकृति को भी सतु प्रधान बनना है। हर क्षण प्रकृति का संग जीवन प्रदान करता है। मैं योग बाबा की याद के शुद्ध वाइब्रेशंस प्रकृति को दे रही। साइड घूम जाए। मेरी स्वयं के प्रति शुभ भावना। बाबा ने मुझे चुना है। जरूर मैं कल पहली वाली विजयी आत्मा देवताई घराने की बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाली सफल आत्मा। पाप समान बनकर चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना।